الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک یعنی قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہماری آخرت کی بہتری کے اعتبار سے نہایت اہم عنوان ہے. کتاب الرقاق میں یعنی دلوں کو نرم کرنے والی چیزیں. اس کتاب الرقاق کے اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا جس کا عنوان آپ نے دیا، باب فی العمل و طولہ، امید اور اس کی طوالت کا بیان. اور اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث مبارکہ کو بیان کرنے سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات بجینات ذکر فرمائی ہیں. آئیے سماعت فرمائیے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سو جو شخص دوزخ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. جہنم سے دور ہو گیا اور جنت میں داخلے کا مستحق ٹھہرا، فرمایا یہ گویا کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. دنیا اگرچہ انسان کو لمبی نظر آتی ہے کہ زندگی 60 سال، 70 سال، 80 سال، فرمایا یہ صرف دھوکہ ہے. دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے. یہ دنیا ہمیں اس لیے دی گئی تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کریں. ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا جاگنا، ہمارا کاروبار کرنا یا کہیں ملازمت کرنا اور مال کما کے لینا، حلال کمانا، حلال کھانا اور اہل و عیال کو کھلانا، یہ سب ضرورتیں ہیں. اور مقصد حیات جو ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کی جو تخلیق ہے، فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے ہے. اور دنیا جسے انسان لمبا سمجھ رہا ہے اور دنیا میں عیش و عشرت میں اور لذات نفسانی میں پڑا ہوا ہے، فرمایا یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس کے بعد سورہ حجر کی آیت نمبر 3 آپ نے ذکر فرمائی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز العرفان، تم چھوڑ دو انہیں کہ کھائیں اور مزے اڑائیں اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے تو جلد وہ جان لیں گے. اس آیہ مبارکہ کو اگر آپ پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اس دنیا میں جتنا انہوں نے کھانا ہے وہ کھا لے، اور اس دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کے اس وقت تک یہ مزے اڑا لیں جو میں نے ان کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے، یعنی وقت آخر آئے گا، وَلَن يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب بندے کا وقت آخر آتا ہے پھر واپس نہیں ہوتا، پھر اسے مؤخر نہیں کیا جاتا، جب آ گیا تو کل نفس ذائقت الموت کا جو ذائقہ ہے وہ اسے چکھنا ہی پڑے گا۔ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی لمبی امید نے انہیں ایمان اور اطاعت الہی اور قرب الہی تک لے جانے والے اعمال سے بالکل غافل کر دیا ہے، اور فرمایا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، امید نے انہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لا رہے، اپنی دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ہے، صحت بھی ملی ہے، فراغت بھی ملی ہے، اور دنیا بھی مل گئی، دنیا کا مال بھی مل گیا، صحت و تندرستی بھی موجود ہے، یہ ساری چیزیں ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے، ایمان کے قریب نہیں آتے، اطاعت الہی نہیں کرتے، قرب الہی تک لے جانے والے جتنے راستے ہیں ان راستوں سے غفلت کا شکار ہے۔ فرمایا ان قریب جب وہ قیامت کے دن اپنے کفر و شرک کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو خود جان جائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں لذتوں اور شہوتوں میں مشغول رہ کر کتنے بڑے نقصان اور خسارے کا یہ شکار ہو گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیہ مبارکہ سے معلوم یہ ہوا، لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا یہ ایماندار کی شان نہیں ہے، یہ مشرکوں کا شیوا ہے۔ جو ایمان سے نکل جاتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، جو ایمان نہیں لاتے یہ انداز تو ان کے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ لمبی امیدیں نہیں باندھتے۔ یاد رکھیں، لمبی امید کی حقیقت یہ دو چیزیں ہیں، دنیا کی حرص اور دوسری بات دنیا سے محبت اور آخرت سے اعراض کرنا۔ لمبی امیدوں کی مذمت کثیر احادیث کے اندر موجود ہے، اور کثیر احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لمبی امیدیں رکھنا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں بلکہ ایک مذموم وصف ہے، اور دنیا کی محبت پیدا ہو جانا، دنیا کی حرص پیدا ہو جانا، مال کی محبت پیدا ہو جانا، اتنی زیادہ ہو جانا کہ انسان اطاعت الہی سے غفلت کا شکار ہو جائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بوڑھے کا دل دو باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری امیدوں کی درازی میں۔ لمبی امیدیں، دنیا کی محبت، یہ دو چیزیں ہیں جو بڑے بوڑھے کا دل بھی جوان رکھتی ہیں۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی مردوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، وسیع و عریض ہو کر دنیا پیش ہوگی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم اس کے ساتھ ایسا ہی پیار کرنے لگو گے جیسا پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اور یوں تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا، یعنی دنیا نے لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بخل اور لمبی امید کی وجہ سے۔ और साथ ही में यह भी बता दिया कि निजात कैसे होती है, यानी इस उम्मत के जो पहले लोग हैं वो जोहद और यकीन अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखते थे और उनका यकीन कामिल था, यानी कामिल ईमान उनके पास मौजूद था, इल्म भी था, अमल भी था, जोहद और तकवा भी था, और इन दो चीजों की वजह से वो नजात पा गए। और जिनके पास ये दो चीजें नहीं बल्कि उनके पास बुखल मौजूद है, कंजूसी मौजूद है और लंबी उम्मीद मौजूद है, फरमाया ये दो ऐसे मजमूम वस्फ हैं जो बंदे को हलाक करके रख देते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर दो बातों का ज्यादा खौफ है, एक ख्वाहिशात की पैरवी और दूसरा लंबी उम्मीद रखना। क्योंकि ख्वाहिशात की पैरवी करना ये बंदे को हक से रोक देता है और लंबी उम्मीदें आखिरत को भुला देती, हालांकि आखिरत को याद करना है और हक की पैरवी करना है, ख्वाहिशात नफसानियां ये हक की पैरवी से बंदे को रोक देती हैं और जो लंबी उम्मीदें हैं ये आखिरत की याद इंसान के दिल से खत्म कर देती हैं। हालांकि आखिरत को याद करना था और दुनिया से भी रगबती इख्तियार करनी थी, लंबी उम्मीदों को खत्म करना था। फरमाया ये दुनिया पीठ फेर कर जाने वाली है और आखिरत पेश आने वाली है, इन दोनों में से हर एक के बेटे हैं। अगर तुम दुनिया के बेटे ना बनने की इस्तेआत रखते हो तो दुनिया के बेटे ना बनना, क्योंकि तुम आज अमल करने की जगह में हो और यहां हिसाब नहीं है, लेकिन कल तुम हिसाब देने की जगह में होगे और वहां पर अमल नहीं होगा। हजरत मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला नो का एक असर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिक्र किया, वो कुछ इस तरह है। हजरत मौला मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तआला नो फरमाते हैं, इरतहालत दुनिया मुदबिरतन वरतहालत आखिरत मुकबिलतन ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل بمزحزحه بمباعده। हजरत मौला मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि दुनिया पीठ मोड़ते हुए कूच कर रही है और आखिरत सामने से आ रही है, और फरमाया कि इन में से हर एक के बेटे हैं, बस तुम आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे न बनना। और उसकी वजह इरशाद फरमाई कि क्योंकि आज अमल है, हिसाब नहीं है, और कल हिसाब होगा और अमल नहीं होगा। शारीन हदीस ने हजरत मौला मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तआला ने इस फरमान की जो वजाहत की है, फरमाया दुनिया पीठ फेर कर जाने वाली है, फरमाया इसमें फिर उम्मीद रखना कितना मजमूम होगा कि ये तो चली जाएगी और तुम इसके अंदर उम्मीदों की एक दुनिया या उम्मीदों का एक बाग बनाए हुए हो, और ये तो बात मजमूम है। और हजरत मौला मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तआला अन्हु के इसी कौल को लेकर बाज हुकमा ने यह बयान किया कि दुनिया पीठ फेर कर जा रही है और आखिरत सामने से आ रही है, और उस शख्स पर गोया ताज्जुब फरमाया जा रहा है कि उस शख्स के ऊपर ताज्जुब है जो पीठ फेर कर जाने वाली की तरफ तो मुतवज्जे है, लेकिन जो सामने की तरफ से इसके पास आ रही है ये उसकी तरफ से पीठ फेर लेता है। तो सामने से आने वाली आखिरत है, हमें आखिरत की फिक्र रखनी है, ना ये कि लंबी उम्मीदें इस दुनिया में बांध कर दुनिया में वसात को तलाश करना है और दुनिया की ख्वाहिशात और लज्जात में पढ़कर अल्लाह तबारक व ताला की इताअत और कुर्ब इलाही के जो रास्ते हैं उनसे गफलत में पढ़कर उन रास्तों को भुला देना है, बल्कि हमें तो इताअत इलाही का रास्ता तलाश करना है और कुर्ब इलाही के रास्तों पर चलकर अल्लाह तबारक व ताला की रजा इस दुनिया में ही हमें तलाश करनी है, ताकि दुनिया में ही हम अल्लाह तबारक व ताला को राजी कर लें। और जो शख्स दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला को राजी कर लेता है वही फरमाया दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। हजरत अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक रिवायत के अंदर एक हिस्सा मैं आपको अर्ज करता हूं। आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी उम्मीद कम रखी, लंबी उम्मीदें नहीं बांधी, उसने उम्मीदें कम रखी हैं, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को चार करामतें अता फरमाता है। उनमें से जो पहली करामत है वो शख्स अल्लाह तबारक व ताला की इताअत पर कवी हो जाता है, यानी अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी उसका नसीब बन जाती, उसे कुव्वत मिलती है, क्योंकि जब उसको मालूम हो कि ये अनकरीब इस दुनिया से कूच कर जाएगा तो वो अपने मुस्तकबिल के लिए उन चीजों का एहतमाम नहीं करेगा जो नापसंदीदा हैं, और अल्लाह तबारक व ताला की इताअत और फरमा बरदारी में अपनी जात को मशगूल करेगा और ये कोशिश करता रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा रब की फरमा बरदारी में वक्त गुजार लूं। और फरमाया दूसरी करामत इसे ये मिलती है कि वो शख्स अपने तफक्कुरात को छोड़ देता है, क्योंकि जब उसे मालूम हो जाएगा कि अनकरीब इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो वो मुस्तकबिल के लिए परेशान नहीं होगा, इसलिए अपने तफक्कुरात को छोड़ देगा और अल्लाह की इताअत की तरफ मसरूफ हो जाएगा। और तीसरी करामत उसे यह मिलती है कि वो कम नेमतों पर भी राजी हो जाता है, कम नेमतें मिली तब भी राजी, यानी गोया दूसरे लफ्जों में यूं कह ले कि ये बंदा अल्लाह की रजा पे राजी रहने लग जाता है। और चौथी करामत इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ये अता फरमाता है कि इसका जो दिल है वो मुनव्वर हो जाता है, और जिसका दिल मुनव्वर हो जाए हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी जलालत का नूर इसके दिल में पैदा फरमाया। एक हदीस मुबारका में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला बंदे का सीना कुशादा फरमा देता है, इससे मुराद क्या है? फरमाया अल्लाह अपना नूर इसके दिल में पैदा फरमा देता है और बंदे का जो दिल है वो अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाता है। सहाबा इकराम अली मुर्दवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कैसे पता चलेगा कि फुलां के दिल में अल्लाह का नूर है, फुलां के सीने को अल्लाह तबारक व ताला ने कुशादा फरमा दिया है? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर तीन अलामतें हैं। उनमें से एक अलामत यह है कि वो बंदा आखरत की फिक्र करता होगा, और दूसरी अलामत यह है कि दुनिया से बेरगबती इख्तियार करेगा, और तीसरी अलामत यह है कि वो मौत से पहले उसकी तैयारी भी करेगा। मदनी चैनल के नाजरीन, दुनिया तो जिल्लत का घर है, इसको आबाद करने वाले खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें जो रहने वाले हैं कब्रों का मुंह देखने वाले हैं, इसका जो शेराजा है वो बिखरने पर मौकूफ है, इसकी मालदारी गुर्बत में बदल जाती है, इसका जो दौलतमंद है वो तंग दस्त हो जाता है, जो तंग दस्त है वो दौलतमंद बन जाता है। और हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह इन चीजों को बयान करने के बाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह से डरो और उसके अता करदा रिस्क पर राजी रहो, बाकी रहने वाले घर यानी जन्नत से फना होने वाले घर यानी दुनिया के लिए पेशगी हिस्सा वसूल न कर, तेरी जिंदगी जायल हो जाने वाले साए और गिरने वाली दीवार की तरह है, बस अच्छे अमल ज्यादा कर और उम्मीदें कम रखा कर। ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत इसकी जजा है। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया की हकीकत को बयान फरमाया। आप फरमाते दुनिया छह चीजों के ऊपर मुश्तमल है, जिसमें पहली चीज गजा है, दूसरी मशरूब है, तीसरी लिबास है, चौथी सवारी है, पांचवी निकाह है, और छठी फरमाया खुशबू है। ये छह चीजें ये दुनिया की हकीकत है, और इन छह चीजों को जब जाके डीपली इनकी हकीकत के ऊपर गौर करते हो तो तुम्हें क्या चीज नजर आएगी? फरमाया गजा, सबसे आला गजा शहद है, और वो मक्खियों का लुआब है, मक्खियों का थूक है, और ये सबसे आला गजा है। देखो इसकी हकीकत क्या है कि ये थूक से बनता है, मक्खियों के लुआब से बनता है, और सबसे आला गजा इसे कहा गया है। और फरमाया मशरूब में सबसे आला मशरूब पानी है, इंसान जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स पी ले, जितने भी मशरूबात मुख्तलिफ फ्लेवर्स के ले ले, लेकिन जो पानी से प्यास बुझती है वो वैसे प्यास नहीं बुझती। फरमाया सबसे आला जो मशरूब है वो पानी है, और इसमें नेक बद इंसान हैवान सब के सब बराबर हैं, अमीर हो गरीब हो, पानी उसके घर में मौजूद है, पानी पी लेते हैं, सब के सब बराबर हैं। और लिबास में फरमाया सबसे जो आला लिबास है वो रेशम का लिबास है और वो कीड़े से बनाया जाता है। और सवारी में सबसे जो आला सवारी है फरमाया वो घोड़ा है, और इस पर मर्दों को कत्ल किया जाता है। और निकाह में सबसे आला नेमत औरत से रिलेशन करना है, और औरत अपने बदन में अच्छे आजा को सवारती है, लेकिन इससे इरादा सबसे बुरी चीज का किया जाता है। और नंबर छह फरमाया कि छठी जो दुनिया की हकीकत है वो खुशबू में है, सबसे आला खुशबू वो मुश्क है और वो हरन का खून है कि खून से बनती है, तो ये सबसे आला खुशबू है। फरमाया ये दुनिया की हकीकत है, ये छह चीजें हैं, कैसे बनती है, कैसे इनकी तरफ जुस्तजू की जाती है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, बस मुसलमान को चाहिए कि दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करें, आखरत की फिक्र करे, मौत से पहले उसकी तैयारी करे, लंबी उम्मीदों को कायम न रखे, क्योंकि वो नहीं जानता कि किस लम्हे में कौन सा वक्त ऐसा आएगा कि इसका सांस रुक जाएगा और ये दुनिया से रुखसत हो जाएगा, बल्कि इसे चाहिए कि मौत से पहले उसकी तैयारी करे और मौत को कसरत के साथ ये याद करता रहे। आखिरत की फिक्र रखेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत सारे इसको फवायद नसीब होते रहेंगे। बल्कि इंसान जब दुनिया को पीछे छोड़ता है और आखिरत की फिक्र में लग जाता है, तो हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए ये बात कही कि आखिरत के पीछे दुनिया भी आ जाती है, यानी आखिरत भी संवर गई, दुनिया भी मिल गई, लेकिन जब आखिरत को पसे पुष्ट डाल देता है और फिर ये दुनिया के पीछे लग जाता है, फरमाया इस सूरत के अंदर आखिरत को इससे हाथ के चली जाती है और दुनिया भी इसके हाथ में नहीं रहती। आपने मदनी चैनल के नाज़रीन कोई शख्स ऐसा नहीं देखा होगा कि मर गया अपना सारा माल कब्र में ले गया, इसके साथ रहा, ये उससे फायदा उठाता रहा। इंसान का जो कुछ भी है, जो दुनिया में इसने कमाया, जो जमा किया, जो इसको मिला, जो इसने बनाया, हाँ वो जितना भी है वो सब का सब यहीं रह जाता है और इंसान अकेला इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मनो मट्टी तले दबा के लोग इसको वापस चले आते हैं। तो ये दुनिया दारुल अमल है, इसमें हमने अमल करके अल्लाह तबारक व ताला को राजी करना है, और रब को जिस शख्स ने राजी कर लिया दुनिया उसकी कामयाब है और आखिरत में भी उसको सुरखुरुई होगी। इसीलिए फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जो जहन्नुम की आग से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही शख्स कामयाब है, और दुनिया की जिंदगी फरमाया नहीं है मगर धोखे का सामान। एक हदीस मुबारका इसी बाब के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुनिया, इंसान और उसे पहुंचने वाली मुसीबतों को जमा फरमाकर एक मिसाल को कायम किया। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुरब्बा खत खींचा, चकोर जिसकी चारों तरफ बराबर हैं, और उसके दरमियान में एक खत बनाया जो मुरब्बा से बिल्कुल खारिज था, यानी एक चकोर डब्बा फिर उससे खारिज एक खत बनाया गया, और उस मुरब्बा के वस्त में छोटे छोटे खतूत बनाए मुरब्बा की जानिब से वस्त में। आपने फरमाया ये इंसान है और ये इसकी अजल यानी मौत उसका इहाता करने वाली है, या फरमाया इसका इहाता कर चुकी है, और ये खत जो इस मुरब्बा से बिल्कुल खारिज है ये इसकी उम्मीद है, और ये छोटे छोटे खतूत आरास यानी दुनियावी मुश्किलात है, अगर वो एक मुश्किल से निकल जाए तो दूसरी मुश्किल उसको डस लेती है, और अगर वो इससे भी निकल जाए तो ये मुश्किल उसको डस लेती है। शारी ने हदीस फरमाते हैं कि हदीस मुबारक में यह मिसाल दी गई कि इंसान की उम्मीद, उसकी मौत और उसकी दुनियावी मुश्किलात इसको आरिज होती रहती हैं, और जब वो इन मुश्किलात से निकल जाता है और उसकी जिंदगी की मियाद भी पूरी हो जाती है तो मुश्किलात को निकलते ही उसके ऊपर मौत तारी हो जाती है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, दुनिया की ये सिर्फ इतनी सी हकीकत, जो आखिरत की अबदी जिंदगी है उसके लिए तैयारी करनी है। اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق کائنات لمبی امیدوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آخرت کی تیاری نصیب فرمائے، موت سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا سے بے رغبتی ہو، بس اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اس کی توفیق مل جائے۔ آمین بجاہ النبی جلابین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
ایمان